नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं और उद्योगों के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नए रोजगार सृजित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, साथ ही व्यवस्था में भी कई बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं और उद्योगों के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलती है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से पिछले एक दशक में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना युवाओं और उद्योगों के बीच मजबूत सेतु का काम कर रही है।
ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलते।
प्रधानमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। वहीं देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम हुए। प्रदेश में ये कार्यक्रम जयपुर सहित जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा में आयोजित हुआ। जयपुर के सीतापुरा में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसमें अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानूनी प्रक्रिया के हर चरण में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का उपयुक्त साधन बनाया जाए। आज नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का जिक्र किया। श्री शाह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां इस प्रणाली ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में बहुत मदद की है। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन ये तभी सफल हो सकती है जब व्यापक डेटा लगातार उत्पन्न किया जाए।
हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के तहत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। ये उपलब्धि युवा जीवन की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि अभियान में तेजी आई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि ये प्रगति भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत और देश भर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों को उजागर करती है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज विधानसभा परिसर में सामूहिक योग कार्यक्रम योगोत्सव का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में हुए इस योगाभ्यास में विधायक, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन दृष्टि प्रदान करता है, साथ ही शारीरिक समन्वय, मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वय रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं। और योग से एक नई ऊर्जा का भी संचरण होता है। इसको हम केवल एक दिन न करके इसको अपने दैनिक जीवन का अंग बनाएं, ताकि हम लोग निरोगी रह सके, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सके।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज अपने आवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। राज्य में अन्य स्थानों पर हो रहे योग कार्यक्रमों के तहत आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में जुम्बा रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद संस्थान की ओर से हवा महल तक योगा रैली निकाली गई। इसमें संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। उधर पाली में आयुर्वेद विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास करवाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आज से अगले महीने की 5 तारीख तक के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है। इस अवधि में राज्य सरकार के विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के लिए स्थानांतरण प्रतिबंध पर फिलहाल यथावत रहेगा। इसके साथ ही वर्षा काल में संभावित परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर भी स्थानांतरण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित कार्मिकों और पति पत्नी के मामलों में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज्य उन्नति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही अन्य कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करते हुए लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया की 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में वरिष्ठ अधिकारियों ने युवा उद्यमियों से संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने सरकार की 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष विषय पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से भी संवाद किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और यहां के युवा एक से बढ़कर एक नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं।
राजस्थान में करीब 8,000 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज है जो DPIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसमें 20,798 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक जयपुर द्वारा समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वे वर्तमान नियमों के तहत पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। गौरतलब है कि 1,086 पदों के लिए ये लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित की गई थी। जयपुर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर निगरानी और कार्रवाई को और सख्त कर दिया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर शहर के 15 स्थानों पर लगे 47 कैमरों के माध्यम से वाहन चालकों पर ऑनलाइन निगरानी रखी जा रही है। पुलिस उपायुक्त यातायात योगेश गोयल ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने और लाल बत्ती का उल्लंघन करने जैसे मामलों में नियमित ई चालान जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रोबेशन पीरियड वाले राज्य कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से भी राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में हर महीने 800 रुपए की कटौती की जाएगी। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। विभाग के संयुक्त निदेशक प्रहलाद कुमार मीणा ने बताया कि इस निर्णय से कर्मचारियों को सेवा के प्रारंभिक चरण से ही सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय संरक्षण उपलब्ध हो सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं और उद्योग के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।